नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और रूस ने प्रमुख क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमले की निंदा की। ईरान ने प्रस्तावित अमरीकी प्रतिबंधों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल के शतकों की बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान भारत और रूस ने प्रमुख क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने इस वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। मीडिया को जानकारी देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बताया कि श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंधों में काफी तनाव आया था। हालांकि उसके बाद दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा के विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। चीन में विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने शनिवार को दोहराया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए आवश्यक है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीन के उपराष्ट्रपति हान जिंग से भी मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की चिंताओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों की उचित और जायज मांगों के समाधान के लिए जरूरी नियमों में बदलाव करने को तैयार है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
We are a young country.
भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
With a large domestic market.
श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। श्री गोयल दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए करीब 200 कारोबारियों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने भूमि की उर्वरता बहाल करने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विभिन्न और पर्याप्त संख्या में अनुमान आधारित तथा लगातार उपलब्ध होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्त योजनाओं की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के COP17 सत्र के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। श्री यादव ने कहा कि बड़े पैमाने पर मरुस्थलीकरण भूमि की उर्वरता नष्ट होने और सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकारी बजट के अलावा वित्त पोषण के अलग अलग अनुमान आधारित और लगातार उपलब्ध स्रोतों के साथ साथ मजबूत सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी की जरूरत है। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। जोंगलेई राज्य में पाजुट जा रहे संयुक्त राष्ट्र के गश्ती दल पर अचानक हमला किया गया। इस हमले में इथियोपिया के एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई, जबकि कई अन्य शांति सैनिक घायल हैं। भारत ने मारे गए इथियोपियाई ब्लू हेलमेट को श्रद्धांजलि दी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों और परिसरों की सुरक्षा का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत ने हमले की तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों को सजा दिलाने और जवाबदेही तय करने पर बल दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि आज रात घोषित होने वाले नए अमरीकी प्रतिबंधों से क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं होगी। ईरान ने किसी भी तरह का तनाव बढ़ने पर कड़ी प्रतिक्रिया की धमकी भी दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान अमरीका और उसके सहयोगी देशों को अमरीकी प्रतिबंधों का कड़ा जवाब देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह के तनाव के गंभीर परिणाम होंगे। ये चेतावनी ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए हफ्तों से चल रही वार्ता में गतिरोध के बाद आई है। ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की शर्तों में अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने, क्षेत्र से अमरीकी सेनाओं की वापसी और संघर्ष के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे की भी मांग की है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल ने शतकीय पारी खेली। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और रूस ने प्रमुख क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमले की निंदा की। ईरान ने प्रस्तावित अमरीकी प्रतिबंधों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल के शतकों की बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।